नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एन से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में इंसानी जान से बड़ा कुछ नहीं। चुनावी हिंसा बहुत पुरानी बात नहीं है, बिना हिंसा के शायद ही कोई चुनावी होता होगा। बंगाल इस मामले में सबसे आगे है, जहां पंचायत से लेकर सांसद चुनाव तक चुनाव में हिंसा हुए बिना पूरे नहीं होते हैं। आज हमारे साथ समाजवादी चिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार रघुजी ठाकुर जुड़े हुए। सर, मोबाइल पर स्वागत सर
जी
आपका।
नमस्ते योगेश जी, नमस्ते
जी
सभी
सर।
मोबाइल वाले के दर्शकों भी नमस्कार।
जी सर। सर,
जी
लोकतंत्र में चुनाव के दौरान होती हिंसा को किस रूप में देखते सर आप?
देखिए, लोकतंत्र में जो चुनाव की हिंसा हो रही है, ये इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र हो तो पर हिंसा क्यों? तो ये सत्ता के ऊपर इनके प्रकार का भी होना, या अपना अल्पमत है, बहुमत नहीं है, फिर भी सत्ता पे हमें काबिज होना है, ये जो सोच है इसके चलते हिंसा है। हिंसा की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां ना लोकतांत्रिक हैं, ना मानवता की हैं, ना बराबरी की हैं, ना इंसानियत की हैं, बल्कि ये तो एक प्रकार के सत्ता के पिपासू लोग हैं जो धनबल से बाहुबल से सत्ता को हथियाना चाहते हैं। दूसरा ये कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि एक दूसरे के भावनाओं के प्रति सम्मान, उनके विचारों के प्रति सम्मान। असहमति हो सकती है परंतु सम्मान विचारों के प्रति हो। पर जब हिंसा होती है तो इसका मतलब ये है कि हम किसी दूसरे के विचार के लिए तर्क से नहीं खंडित कर पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं, तो हम हिंसा को दबाना चाहते हैं। तो हिंसा अपने आप में एक अलोकतांत्रिक है, अहिंसा अपने आप में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है।
सर, लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व होता है। और
जी
सर, 17 तारीख को मध्य प्रदेश में मतदान हुआ, जिस दौरान कई क्षेत्रों में आपने सुना होगा या देखा होगा न्यूज़पेपरों में हिंसा देखने को मिली। सर, ये समाज में कितना प्रभाव डाल पाती है?
देखिए, अभी जब अपन हिंसा और अहिंसा की चर्चा करते हैं तो हिंसा भी दो प्रकार की है। एक हिंसा तो वो है जो शरीर पर हमला करती है, दूसरी शाब्दिक हिंसा भी है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो मस्तिष्क को बिगाड़ती है। इन चुनावों में मैं देख रहा हूं, इन चुनाव क्या अभी पिछले तो कुछ वर्ष समय से चुनाव में शाब्दिक हिंसा और शारीरिक हिंसा दोनों एक प्रकार की स्थायी घटनाएं बन गई है। मध्यप्रदेश के चुनाव में भी हमने देखा और अनुभव किया कि इस बार बड़े पैमाने पे बूथ कैप्चरिंग हुई, जो कि आमतौर पर नहीं होती थी। खासकर ईवीएम के आने के बाद में बूथ कैप्चरिंग में कमी आई थी, परंतु तो इस बार तो हमने देखा कि लोगों ने अपने अपनी जाति के आधार पर, जहाँ जो जो ताकतवर है उसने दूसरी जाति के अल्पमत के लोगों के लिए वोट नहीं देने दिया, उनको वंचित कर दिया और उनकी तरफ से वोट भी अपन डाल दिया। तो इस प्रकार की जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं चुनाव में, बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुई हैं, ये इन घटनाओं में सरकार की हिस्सेदारी है, क्योंकि सरकारी तंत्र के बगैर ये घटना संभव नहीं है। दूसरी बात जो है कि कई घटनाएं ऐसी घटी हैं कि जहां अपने से विरोधी की जान ले ली गई है, उनको मार दिया गया, कहीं गोली चली है, कहीं लाठियां चली हैं, कहीं गाड़ियां चढ़ा दी गई हैं। तो ये जो हिंसा हुई है, ये हिंसा भी मध्यप्रदेश में अभी तक इतनी ज्यादा नहीं होती थी। पिछले चुनाव के दौरान भी हम लोग देखा है कि अपवाद स्वरूप कहीं कोई वो दो दबंग पार्टियां हैं तो उनमें आपस में लड़ाई हुई, अलग बात है। पर इस बार तो बिल्कुल ये था कि आदमी चाहे जितनी हिंसा करना पड़े पर उसको लेके हमें चुनाव को जीतना है। और तीसरा शाब्दिक हिंसा थी, बढ़ गई थी, उससे तनाव बढ़ा। शाब्दिक हिंसा ये समाज में तनाव बढ़ाती है और तनाव बढ़ा के हिंसा के लिए एक प्रकार का ईंधन देती है, जिससे हिंसा बढ़ती है। तो इस चुनाव में परस्पर जो बड़ी पार्टियां या जो जितनी जीतने हाली वाली पार्टियां हैं, उनने जिस भाषा का एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल इतना भयावह था कि उसके चलते तनाव बहुत गहरा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उस तनाव ने भी हिंसा कराई है। तो शाब्दिक हिंसा, शारीरिक हिंसा और शाब्दिक हिंसा के चलते पैदा हुआ तनाव, और तनाव का ईंधन में फैलने वाली इस हिंसा की आग, इन चार घटनाओं ने इस परिदृश्य के चुनाव को बहुत प्रभावित किया है।
जी सर। सर चुनाव में जो जन हानि होती है और जो लोगों को जान जाने,
जी
यह कितना सही या गलत देखते हैं सर चुनाव के दौरान सर?
नहीं, देखिए, हिंसा तो सदैव अस्वीकार्य है।
जी
इंसान की जान को लेने का अधिकार किसी के लिए नहीं है, ये अधिकार तो केवल देने वाले का है, जो देने वाला कोई अन्य व्यक्ति है या अन्य शक्तियां। और चुनाव में जब हिंसा होती है तो वो चुनाव की हिंसा केवल शरीर की नहीं है, वो सत्ता के ऊपर बलात् कब्जा करना है, यानी एक प्रकार से अलोकतांत्रिक सत्ता को बैठाने के लिए हिंसा होती है। तो चुनाव की जो हिंसा है, ये आम हिंसाओं से एक प्रकार से और ज्यादा बुरा प्रभाव डालती है। आमतौर पर हिंसा होती है, लोगों के ऊपर में झगड़े होते हैं, दो समूह में लड़ाइयां होती है, कुछ लोग प्रभावित होते हैं, कुछ लोग लड़ते हैं। पर जब आप चुनाव में हिंसा करते हैं और चुनाव की हिंसा के बदनाम से आप चुनाव जीतते हैं, तो फिर आप एक अलोकतांत्रिक सत्ता का बनाने काम करते हैं। तो चुनाव की हिंसा तो लोकतंत्र को खत्म करने वाली है, और इसको रोकने के लिए जो उपाय तंत्र के द्वारा, प्रशासन के द्वारा होने चाहिए थे, वो उपाय उस दिन के नहीं हुए हैं, बल्कि एक प्रकार से कहना चाहिए उसकी उपेक्षा हुई है, और उनके लिए एक प्रकार की मूक सहमति भी प्रशासन तंत्र की रही है। क्योंकि प्रशासन तंत्र की इच्छा और सहमति के बगैर, वो सहमति खुली हो या मूक हो, उसके बगैर कोई चुनावी हिंसा संभव नहीं।
जी सर, लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व है, पर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जिस तरीके से हिंसा देखी जा रही है, इसको किस रूप में देखते हैं
ये राजनीतिक पार्टियों की असफलता है।
सर?
ये राजनीतिक पार्टियां जनता में अविश्वसनीय बन चुकी हैं, और ये जनता के विश्वास को पाने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रही हैं, काबिल नहीं हैं, या इनने जिस प्रकार के काम अतीत में किए हैं उससे जनता का इनके प्रति विश्वास उठ चुका है, जनता का विश्वास उठ चुका है। तो उस उठे हुए विश्वास को ये बलात् कब्जा करना चाहते हैं, यानी आप हार को हिंसा से जीत में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी असफलताओं के ऊपर पर्दा डाल करके एक हिंसा के माध्यम से सफलता लाना चाहते हैं। ये एक प्रकार के तानाशाही की शुरुआत है, जो भविष्य में लोकतंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।
जी सर। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी चिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार रघुजी ठाकुर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर इंसानी जान से बड़ा कुछ नहीं इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। सर जी, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत
धन्यवाद
धन्यवाद।
योगेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके श्रोताओं को धन्यवाद, और हमें अच्छा लगता है कि आप और मोबाइल वाणी एक ऐसे सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं कि जो सवाल देश के, समाज के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको धन्यवाद।
जी, मोबाइल वाणी सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।